कल हम लोग जो हमारा दूसरा सत्र था दिव्यत्व का ज्ञान, उसमें उपस्थिति, भगवान की उपस्थिति, भगवान की परिभाषा, भगवान को देखने की प्रक्रिया और ज्ञान जानने के तीन मार्ग के बारे में चर्चा की। और उसमें हमने ये चर्चा किया कि ज्ञान जानने के जो तीन मार्ग हैं उसमें सबसे पहला है शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण में धोखा हो सकता है, अनुमान प्रमाण में धोखा हो सकता है, लेकिन शब्द प्रमाण अगर सही जगह से आया हो तो उसमें धोखा नहीं हो सकता। हम क्या उदाहरण दिए थे शब्द प्रमाण के लिए? हम कुछ उदाहरण दिए थे, क्या उदाहरण था? माता पिता, अगर किसी को अपने पिता के बारे में जानना है तो माता से पूछ सकते हैं। और इस प्रकार से चर्चा करते हुए हम जानना चाहते थे कि शास्त्र में भगवान के बारे में क्या बोला है। उससे पहले हमने ये भी चर्चा किया कि हम शास्त्र में विश्वास क्यों करें। अपने मोबाइल और बच्चों को बोलिए अच्छा हो जाए तुम्हारी विवाह होगी। तो हमने चर्चा किया था कि शास्त्र में विश्वास करेंगे क्यों? ठीक है, शास्त्र आप बोले माता है और भगवान पिता है, लेकिन हम शास्त्र में विश्वास नहीं करते। तो उसमें हमने कुछ ऐतिहासिक तथ्य, कुछ भविष्यवाणियां के बारे में चर्चा करी। और हमने ये चर्चा करी कि कैसे शास्त्र जो है वो एक मैनुअल की तरह है, एक यूजर गाइड की तरह है, जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट के साथ एक मैनुअल मिलता है। इसी प्रकार से इस जगत में जो बद्ध जीव, जो मनुष्य प्राणी, जो मनुष्य शरीर में है, खासतौर से ऐसे जीव जो मनुष्य शरीर में है, जिनके पास थोड़ी विकसित बुद्धि है, जो आहार निद्रा भय मैथुन से ऊपर उठ के अपने जीवन में कुछ ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ऐसे शास्त्र दिए गए। तो प्रश्न ये आएगा कि जब हम एक इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं तो एक मैनुअल मिलता है, दो या तीन या चार मैनुअल नहीं मिलते। मैनुअल तो एक ही होता है ना। अगर आप एक कंप्यूटर खरीदे या वॉशिंग मशीन खरीदे या टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट खरीदे तो एक मैनुअल देंगे, चार मैनुअल नहीं देंगे जिसमें चार अलग अलग प्रकार का ज्ञान दिया हो। तो ये प्रश्न आएगा कि अगर एक धर्म एक संदेश है तो अनेक अनेक शास्त्र क्यों है, अनेक अनेक प्रकार के शास्त्र क्यों है? किसी के लिए बाइबल क्यों है, किसी के लिए कुरान क्यों है, अनेक प्रकार के कुरान क्यों है, अनेक प्रकार के उपनिषद क्यों है, वैदिक शास्त्र चार वेद क्यों है, और भगवत गीता क्या है, श्रीमद् भागवतम क्या है? ऐसा कहना है कि अनेक अनेक शास्त्र, जैसा कि आप यहां पढ़ रहे हैं, स्थान काल और पात्र के अनुसार प्रस्तुत करते हैं। स्थान काल और पात्र के अनुसार। माता जी आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, 50 में से 20 घटा कितना होता है?
30।
माता जी आप बताइए 100 में से 50 गया कितना होता है? अच्छा आगे आप बताइए 40 में से 100 घटा कितना होता है? माता जी विचार कर लेती है कि नहीं, 40 में से 100 गया कितना होता है? 40 में से 100 घटा, 40 में से 100 घटा, 40 में से 100 कैसे घटेगा? अगर आपके पास 40 रसगुल्ले हैं और 100 लोगों को बांटने हैं तो बांट सकते हैं क्या? बांट सकते हैं, आधा लेना पड़ेगा, तो भी नहीं होगा। चलो आपके पास 40 रसगुल्ले हैं, मैं बोलता हूँ कि सबको एक पूरा रसगुल्ला मिलना चाहिए और 100 व्यक्ति को रसगुल्ले खिलाएंगे क्या? उनके हिसाब से 40 में से 100 घटता ही नहीं है। तो अलग अलग प्रकार, अलग 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 व्यक्ति अलग अलग प्रकार का गणित पढ़ेंगे। गणित में भी विभिन्न प्रकार के स्तर होते हैं। अभी हमसे पूछा कि 100 में से 50 घटाइए तो फट से बोल दिया है ना, या 40 में से 20 घटाइए फट से बोल दिया। जिसने अभी एक छोटा बच्चा जो अभी अभी मतलब पहली दूसरी तीसरी कक्षा में है, चौथी कक्षा में है, अभी यहां पे तो बहुत छोटा बच्चा दिखाया है, लेकिन अगर छोटे बच्चे से आप पूछेंगे 2 में से 5 घटाइए तो क्या होगा, 2 में से 5 तो घटा ही नहीं सकते। जैसे मैंने बोला अगर 40 रसगुल्ले हैं और 100 लोगों को पूरा रसगुल्ला खिलाना है तो नहीं खिला सकते। तो छोटे बच्चे के जिसने गणित एक स्तर तक जानी है वो 2 में से 5 बोलेगा नहीं घट सकता, लेकिन जिसने गणित का एक दूसरा भी विज्ञान पढ़ा है पूरा, कुछ शिक्षा में गणित पढ़ी है अगर, तो 2 में से 5 गया तो कितना -3। अभी ये क्या है, कौन बता सकता है क्या लिखा है? आप में से कुछ लोग तो मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, काफी लोग पढ़े होंगे, कुछ लोग बड़ी जल्दी पढ़ रहे हैं यार, कुछ लोग का नहीं मालूम ये क्या है, जिसको गणित का इतना ज्ञान नहीं है उनको नहीं मालूम। तो गणित के भी अलग अलग स्तर होते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से गणित के स्तर होते हैं, ये कोई भी अगर आप फील्ड में जाएंगे, कोई भी विद्या अध्ययन करेंगे तो अलग अलग स्तर होते हैं। ऐसे ही धर्म भी, ऐसे ही जो शास्त्र भी है वो अलग अलग देश काल पात्र स्थिति के अनुसार उनका प्रचार होता है। विभिन्न धर्म है, देख सकते हैं हम, क्रिश्चियनिटी है, मुस्लिम है, हिंदू धर्म है, इस्लाम है, सब में क्या समानता है? हम देखेंगे सब में कुछ बेसिक समानता है। बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल का नतीजा निकलता है भगवान को अपने हृदय एवं आत्मा से प्रेम करो। अगर कुरान पढ़ेंगे तो इस्लाम का अर्थ ही दिया है पूर्ण समर्पण, इस्लाम शब्द का अर्थ पूर्ण समर्पण। बहुत सरल बात है, छोटा बड़ा बच्चा भी यह प्रश्न पूछता है कि अरे अगर भगवान एक है, हम सब भगवान की संतान है, तो झगड़ा किधर से हो गया? तो यहां तो अगर कोई शास्त्र पढ़ेगा, मेरी बात लोग शास्त्र पढ़ते नहीं, अरे हिंदू क्रिश्चियन मुस्लिम तो छोड़ो, मुस्लिम लोगों में आपस में, क्रिश्चियन में आपस में, और हिंदुओं में आपस में ही इतने धर्म है, आपस में इतनी श्रेणियां हैं। भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसका अंतिम जो भगवान का आदेश है, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हर प्रकार के डर छोड़ के, हर प्रकार की चिंता छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। इस्लाम का भी तो वही अर्थ है, पूर्ण समर्पण, बिल्कुल किसी प्रकार का डर मत रखिए। बाइबल में तो ये लिखा है अपने हृदय और आत्मा से भगवान को प्रेम करो। कोई भी धर्म पढ़ेंगे तो मूल सिद्धांत जो है वो एक ही है। क्या है मूल सिद्धांत? कोई पढ़ेगा इसको? अरे प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करना है मूल सिद्धांत, ये धर्म है। धर्म मतलब प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा उसका परिभाषा देते हैं, धर्म मतलब जिसे आप किसी चीज से अलग नहीं कर सकते, भिन्न नहीं कर सकते। जो पानी है, पानी का धर्म क्या है? पानी का धर्म होता है कुछ, धर्म की परिभाषा सुनिए, वो चीज जिसे आप अलग नहीं कर सकते, ऐसा कौन सा गुण है जिसे आप अलग नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं धर्म। पानी, पानी का ऐसा कौन सा गुण है जिसे आप अलग नहीं कर सकते? उसका लिक्विडिटी, तरलता। पानी मतलब तरल रहेगा ना, कभी पानी को सॉलिड देखा है? वो तो बर्फ हो गया, पानी नहीं रहा। अगर आप बोलेंगे पानी दो बार कोई बर्फ देगा तो आप संतुष्ट नहीं होंगे, पानी ना आता बर्फ तो नहीं मांगते, क्योंकि पानी का धर्म तरलता। अग्नि है, अग्नि के भी कुछ गुण है जिन्हें आप अलग नहीं कर सकते, क्या बताइए? जलना, अग्नि गर्मी, उसकी गर्म ताप, गर्म टेम्परेचर, और क्या? अग्नि का और क्या लक्षण है और क्या स्वभाव है?
प्रकाश
रोशनी होती है आदमी से, तो ये उसका धर्म है जिसे आप अलग नहीं कर सकते। उसी प्रकार से आत्मा का भी वो धर्म है। क्या धर्म है आत्मा का? अगर आप किसी के भी जीवन में देखेंगे तो हर व्यक्ति, हर जीवात्मा, हर जीव किसी ना किसी की सेवा में लगा है, किसी ना किसी की सेवा में, परिवार में बच्चों की सेवा में, पति पत्नी की सेवा में, माता पिता की सेवा में, बाहर जाएंगे तो समाज की सेवा में, ऑफिस में जाएंगे तो किसी मालिक की सेवा में, किसी ना, और कोई भी नहीं है तो घर में कुत्ता रख के उसकी सेवा करने लगते हैं। सेवा करे बिना दिल संतुष्ट नहीं होता, किसी की तो सेवा करनी है, किसी के लिए कुछ तो करना है। अगर बोलो आप खाली बैठे तो मन परेशान हो जाता है, किसी के लिए कुछ तो करना है, तो सेवा करना तो हमारा धर्म है। देखिए सेवा करना तो हमारा धर्म है, शब्द पूरे सेंटेंस में आ गया, वाक्य में आ गया। तो जिस प्रकार से अग्नि का धर्म है, पानी का धर्म है, उसी प्रकार से जीव का भी धर्म है सेवा करना। और वो धर्म पूर्ण कब होता है? जब वो सेवा भगवान में लगती है। यहां लिखा है हमारा कार्य प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करना, ये धर्म होता है। धर्म की परिभाषा के अनुसार हम देखिए, हर चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो या मुस्लिम हो, इस्लाम हो या फिर हिंदू धर्म हो, सबका मूल सिद्धांत एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो विविधताएं क्या है? अगर मूल सिद्धांत एक है तो अलग अलग धर्म बने क्यों? प्रश्न आएगा। ये प्रश्न अगर कोई भी शास्त्र पढ़ेंगे तो पढ़ के समझ जाएगा कि ये विविधताएं बनी क्यों। एक बार किताब खोलिए और उसके अंदर दिए हुए आदेशों को पढ़िए तो समझ जाएगा कि ये विभिन्नताएं क्यों बनी। ये देखिए, जैसे कि अभी छोटे प्राइमरी स्कूल में जाएंगे, प्राइमरी स्कूल में बच्चों का स्कूल रहता है, प्राइमरी या नर्सरी, केजी, प्री नर्सरी, कभी उस कमरे में वहां नियम नहीं लिखे होंगे यहां पे सिगरेट पीना मना है। अभी छोटा 3 साल का बच्चा क्या सिगरेट पीता, वहां पे ऐसा नहीं लिखा रहेगा यहां मदिरा का सेवन मना है, है कि नहीं? ऐसा कभी लिखा रहेगा क्या? अगर वहां पे ऐसा लिखा है मदिरा का सेवन मना, पीना मदिरा का सेवन मना है या सिगरेट पीना मना है, इसका वो देख के ही समझता है कि यहां पे ऐसा लोग करते होंगे। जगह जगह पे लोग पान थूकते हैं तो लिखना पड़ता है यहां पे थूकना मना है, तो मतलब यहां पे ऐसा लोग करते होंगे। तो जिस प्रकार के आदेश दिए हैं उससे समझ जाता है कि ये शास्त्र किसको सिखाया जा रहा है। प्राइमरी स्कूल में ऐसे आदेश नहीं दिए, वहां तो मालूम है बच्चे लोग ऐसा करेंगे ही नहीं, वहां पे अलग प्रकार के आदेश होंगे। कैसे आदेश होंगे बताइए? बच्चों के कमरे में कैसे आदेश हो, क्या लिखा होगा? क्या दीवार पे मार्किंग नहीं करने का? वेरी गुड, क्या पॉइंट कर रहे हो, दीवार पे मार्किंग नहीं करने का, कुछ पेन नहीं लगा रहे, तो ऐसे कुछ कुछ उनकी बुद्धि के अनुसार। ऐसे ही बाइबल में ईसाई धर्म में लिखा है तुम हत्या मत करो। जिस समय क्रिश्चियनिटी का प्रचार हुआ उस समय लोगों का मेन जो धर्म क्या बना दिया था, मांस, किसी को भी मार के कभी भी खाना, कोई भी मांस खाना, तो लिखा है थाउ शैल नॉट किल, आप किसी की हत्या नहीं करेंगे। अगर कुरान पढ़ेंगे तो कुरान में लिखा है अपनी मां और बहन के साथ शारीरिक संबंध मत रखो। अभी गीता में तो ऐसा नहीं लिखा, अभी गीता में तो अभी ये तो हानि हो गया, कहां पे लिखे क्या ऐसा? आप सोचिए इस अस्पताल में आते हैं और जगह जगह पैसा लिख रखा है, ये कैसी जगह है यहाँ पे, कैसे लोग रहते हैं, ये भी लिखना पड़ता है। तो अगर ऐसे ऐसे आदेश शास्त्र ने दिए हैं, मतलब जिस समय वो शास्त्र का प्रचार हुआ उस समय लोगों की चेतना किस तरह की, लोग ऐसा कर रहे थे, इसीलिए उनको एक शास्त्र दे दिया गया ऐसा मत। ईसा मसीह ने के शब्द क्या बोले, वो मुझे और भी बहुत कुछ कहना है परंतु तुम उन्हें अभी सहन नहीं कर सकते। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, कहीं किसी हद तक ज्ञान दिया जा सकता है, लेकिन अगर जो पात्र है वो भी उसके लिए रेडी नहीं है, उसके लिए तैयार नहीं है, तो उसको नहीं दे सकते। अगर पात्र ही तैयार नहीं है, पात्र का जो करेक्टर है वो इतना नीचा है, उसका जो चरित्र है इतना नीचा है कि उसको छोटी छोटी बात सिखाने में ही बहुत समय जाएगा, बहुत साल निकल जाएंगे जब तक उसको भगवान का दिव्यत्व का ज्ञान नहीं रहेगा। अरे इस जगत में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कैसे बोलचाल करे वही सिखाने में उसको बहुत साल निकल जाएंगे। झूठ मत बोलो, दूसरे को प्रेम करो, धोखा मत दो। अरे उसके बेसिस इतने खराब है, उसको उच्च ज्ञान क्या देंगे। इसलिए मोहम्मद ने भी बोला, मुझे दो प्रकार का ज्ञान मिला है, जिसमें मैंने एक तुम्हें सिखाया है, यदि मैं दूसरा तुम्हें सिखाता तो तुम्हारा हृदय घबरा जाएगा। अगर वो पात्र तैयार नहीं है और उसको आप ऐसा ज्ञान दे दो वो तो घबरा जाएगा। अगर आप सब यहाँ पे 7 दिन या 5 दिन के इस कोर्स में आए हैं और 5 दिन के कोर्स से पहले ही दिन बोल दिया जाए, इस कोर्स का लक्ष्य है आप में से हर व्यक्ति को 5वें दिन संन्यास लेना होगा, अपना घर त्याग के संन्यास लेके सब छोड़ के वही व्यक्ति इस कोर्स में आए, बताइए कितने लोग आएंगे। रात रख दिए सच्ची बताइए कितने लोग आएंगे, वो हाथ नहीं खड़ा कर रही है तो घोड़ा भी खड़ा कर रही है। तो ऐसा आपने बोल दिया आदमी घबरा जाएगा। इससे पहले तो इंसान घबरा जाएगा, इतने बड़े बड़े आप बातें बोल दिए। तो अगर कोई अगर आया आपके सामने लेक्चर में आया और उसको मदीना की आदत है, मांस की आदत है, और आप उसको खड़ा करके ऐसा गाली सुना रहे हैं, आप इतने बुरे हैं, आप पतित हैं, आपको तो नरक में जाना चाहिए, आप इस लेक्चर में कैसे आ गए, ये क्या है, थोड़ी भी सभ्यता है कि नहीं। तो किसी प्रकार से पैगंबर मोहम्मद ने बोला कि अरे अगर मैं आपको पूर्ण विज्ञान दे दूं आपका हृदय टूट जाएगा, आप समझ उसको सहन नहीं कर पाएंगे। तो जहां वो बोले कि दो प्रकार के विज्ञान है, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ऐसा ही श्लोक बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं मैं तुम्हें दोनों प्रकार का ज्ञान दे रहा हूं। अब मैं तुम्हें भौतिक और आध्यात्मिक विषय पर संपूर्ण ज्ञान प्रदान करूंगा। जैसे एक बच्चा बोलता है 5 में से 2 घटा 3, लेकिन उसको नहीं मालूम 2 में से 5 कैसे घट सकता, थोड़ा प्रगति हुआ तो बोला 2 में से 5 घटा -3, थोड़ा प्रगति हुआ तो ट्रिग्नोमेट्री का बात करने लगा, कैलकुलस का बात करने लगा, और ज्ञान बढ़ गया उसको। उसी प्रकार से शास्त्र में अध्यात्म में भी अलग अलग स्तर के लोगों को अलग अलग प्रकार का ज्ञान दिया जाता है। गीता में भगवान ने बोला ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम, ज्ञान और विज्ञान पूर्ण, थियोरी और प्रैक्टिकल, भौतिक जगत का ज्ञान और अध्यात्म का विज्ञान पूर्ण देगा। यज ज्ञातवान न इह भूयो अन्यत्, यज ज्ञातवान न इह भूयो अन्यत्, जिसे प्राप्त करके न इह भूयो अन्यत, और कुछ प्राप्त करने योग्य रह ही नहीं जाएगा। पूर्ण ज्ञान दे देंगे आप। इस प्रकार से शास्त्र हमें अलग अलग स्तर से लेके जाते हैं। पहले वो शास्त्र देखिए, अभी किसी को अगर किसी हिंदी शब्द इंग्लिश से हिंदी का मतलब जानना है, कोई शब्द का मतलब जानना है, यहां पे देखिए हमको भी ये स्लाइड बनाने के लिए शब्द के मतलब ढूंढने पड़े, बहुत सारे शब्द नए हैं। तुलनात्मक अध्ययन तो हमको डिक्शनरी में देखना पड़ा, कंपैरेटिव स्टडी धर्म की कंपैरेटिव स्टडी करनी, तो कुछ धर्म कैसे हैं जैसे ये वेबस्टर डिक्शनरी पॉकेट डिक्शनरी, लेकिन अगर डिटेल स्टडी करना चाहिए तो बड़ा डिक्शनरी चाहिए, डिटेल डिक्शनरी चाहिए। डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, पूरा रेंज है उसमें। तो धर्म में कुछ मूल शिक्षाएं समान है, चोरी मत करो, सभी से प्रेम करो, शत्रुओं को क्षमा करो, लेकिन गीता भागवत और वैदिक धर्म में कुछ ऐसे गुह्य तत्व दिए हैं, कुछ ऐसी गुह्य शिक्षाएं दी हैं जो कहीं और नहीं मिलती। पूरा डिटेल में गया पहला जी, भगवान के विभिन्न गुणों के बारे में, भगवान का रूप पूरी तरह से वर्णित किया है। संचिंतय भगवतश्चरणारविंदम् वज्राकुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाद्यम् उत्तुङ्गरथविलसन्नखचक्रपाल ज्योत्स्नाभिआहतमहद्हृदयान्धकार। भागवत में भगवान के चरणों का ही इतना सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया है, इतना सुंदर उसका वर्णन किया है। संचिंतये भगवतश्चरणारविंदम्, अरे भगवान के चरणों पे ध्यान लगाइए, जिनके चरणों में, जिनके चरण कमल में कुछ खास चिन्ह है, वज्रांकुश ध्वज सरोरु लाञ्छनाद्य, वज्र अंकुश ध्वज सरोरु है कमल एक पद्म से कुछ खास निशान है उसके, उनके चरणों के उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल। उत्तुंग रक्त विलसन नख, नख मतलब नाखून, जो उन भगवान के चरणों के नाखून है उससे जो तेज निकल रहा है वो तेज ऐसा है जैसे चंद्रमा के आसपास चकोर जो तेज रहता है। ज्योत्स्ना भी आहत महत हृदय अंधकार, उन्हें कोई अगर उन नाखून पे, भगवान के चरण कमलों के नाखून पे बहुत समय तक ध्यान लगाता है, अगर ज्योत्स्ना भी, जो ज्योत्स्ना निकल रही है उससे, आहत महत, महत बड़े से बड़ा जो घोर अंधकार है हृदय का, आहत नष्ट हो जाएगा, जो मोटी से मोटी जो जमी हुई है अंधकार की जो लेयर जमी हुई है हृदय पे वो नष्ट हो जाएगी, पूरी तरह से टूट जाएगी केवल उन चरणों पे ध्यान लगा। भगवान के एक एक अंग को बहुत ही डिटेल में अच्छे से वर्णन किया गया है। हा हा संहरे अवनताखिल लोक तीव्र शोकाशु सागर विशोषण मत्युदार, उन्हें भगवान की हंसी स्माइल, सिर्फ मुस्कुराहट, हंसी भी नहीं केवल मुस्कुराहट। हा संहरे अवनताखिल लोक तीव्र, अगर उस मुस्कुराहट पे कोई ध्यान लगाएगा तो लोक तीव्र, तीव्र बहुत जल्दी से, शोकाशु सागर विशोषण, जो शोक, जब शोक होता है तो आंसू बहते हैं, अगर किसी के हृदय में उन आंसुओं की बाढ़ आ गई, दुख का, शोक के आंसुओं की बाढ़ आ गई तो वो क्षण में ही सूख जाएगी, शोकाशु सागर विशोषण सूख जाएगी अत्युदार। तो बहुत ही डिटेल में उसकी चर्चा की है वेदी शास्त्र। भगवान के धाम, दूसरा लिखा है यहाँ पे, भगवान के धाम का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षाभितेश सुर भीर विपालयंत, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, वो धाम ऐसा है जहां पे एक एक चीज चिंतामणि से बनी हुई है, कोई मामूली रत्न नहीं है, चिंतामणि सत्मशुकल्प वृक्ष, एक एक वृक्ष कल्प वृक्ष वृक्ष है जो इच्छा करो वो मिल जाएगा। लक्षावृतेश सुर वीर विपालयंतम्, अनेक अनेक लाखों सुर भी गाय हैं जो चाहिए वो देंगे। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमान गोविंद आदि पुरुषम तमहं भजामि, लक्ष्मी सहस्र शत, एक नहीं हजारों लक्ष्मियां, आप लोग घर में लक्ष्मी की पूजा करते होंगे, अरे एक लक्ष्मी की कृपा, अरे उस धाम में तो हजारों लक्ष्मियां भगवान के चरणों की मालिश कर रही हैं, सेवा कर रही हैं। अभी हम बोल सोचेंगे अरे ये तो सब कैसे विश्वास करें। तो कल ही हमने श्रद्धा के बारे में बहुत चर्चा करी कि श्रद्धा तो हम घड़ी घड़ी करते हैं, छोटी छोटी चीज पर श्रद्धा करते हैं, यहां तो हम शास्त्र पर श्रद्धा कर रहे हैं जो अपौरुषेय है, जो किसी गलती से परे है, इसमें कुछ भी गलत नहीं हो सकता कि वो भगवान के द्वारा स्वयं दिए गए। अब उदाहरण ये छोटा सा, अगर एक चींटी से बोलेंगे कि ऐसा एक बिल्डिंग है उसमें 1200 कमरे हैं, एक कमरे में करोड़ों करोड़ों तुम्हारे और मेरे जैसी चींटियां समा सकती हैं, बोलेंगी चींटी बोलेंगी ये कैसी बात कर रहे हैं। तो शास्त्र में धाम की रचना की गई है भगवान की, फिर भगवान के साथ हमारे विभिन्न संबंधों की का विवरण किया गया, यम काम क्रोध प्रमेय सहित बोल रहे हैं भगवान के किसी भी रिश्ते में, भगवान अनेक रिश्तों में भगवान पे ध्यान लगाया जाता है। वात्सल्य रस में, साख्य रस में भगवान आपके मित्र बन सकते हैं, आपके पुत्र बन सकते हैं, साख्य रस माधुर्य रस में अनेक प्रकार के रसों में भगवान की सेवा की जा सकती है, बहुत ही गुह्य बात की है। तो ये सब बातें उन लोगों को नहीं बताएंगे जिनका अपने इंद्रियों में वश ही नहीं है। अरे जहां पे ऐसी चीज लिखी है कि अपनी माता और बहन के साथ शारीरिक संबंध ना करें, अगर ऐसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो उसे क्या बताएंगे आप धाम के बारे में। अच्छा हम बोलेंगे कि पैगंबर मोहम्मद ने जब ज्ञान दिया उस समय लोग बहुत नीच बुद्धि के थे, लेकिन आज तो किसी में अंतर नहीं है, चाहे क्रिश्चियन हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबके सब नीच बुद्धि के, कलौ शूद्र संभव, हम सब जैसे ही कलयुग में आया मतलब हम सब का बुद्धि बहुत नीच है, मंद है। लेकिन फिर भी ऐसा ज्ञान हमें एक्सेसिबल है, अवेलेबल है, हम इसके बारे में जान सकते हैं। ज्ञान आप सब लोग मंदिर जाते होंगे रेगुलर, जैसे उस दिन कोई बोल रहे थे हनुमान जी के मंदिर, कौन बोला हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, कोई तो उसका भी बोला, कोई दुर्गा जी के मंदिर जाता है, अनेक कोई शिव जी के पास जाता है, कोई भगवान कृष्ण के पास जाता है, कोई राम जी के पास जाता है। आप मुझे कुछ ऐसी प्रार्थनाएं बताइए, आप मंदिर में जाके प्रार्थना भी करते होंगे, कुछ उदाहरण दीजिए क्या प्रार्थना करते हैं, कभी याद कीजिए आप मंदिर गए थे ये प्रार्थना करें, कुछ प्रार्थनाएं अगर आप बता सकते हैं तो बताइए, कुछ प्रायोरिटी बताइए, कोई एक प्रार्थना आपने मंदिर में की हो, जैसे कोई स्टूडेंट है तो प्रार्थना की होगी मैं पास हो जाऊं एग्जाम या डॉक्टर जाऊं एग्जाम, बोलिए हाथ खड़ा कोई तो बताइए, आप मंदिर जाते हैं माता जी क्या मांगते हैं भगवान से,
सत्य और भक्ति,
हाँ माता जी तो शुद्ध भक्त है, भक्ति को छोड़ती नहीं कभी, आप क्या मांगते हैं, तो सब सारे शुद्ध भक्त का फर्स्ट है, और क्या बुद्धि मांगते हैं, और क्या मांगते हैं, आप क्या मांगते हैं, आप बताइए,
मोक्ष,
मोक्ष, मोक्ष मांगते हैं,
अच्छी संतान,
हाँ, अच्छी संतान, और
सद्बुद्धि और सद्विचार, हाँ, सद्बुद्धि और सद्विचार,
अच्छा मुझे आपको ये बताइए क्या मांगना चाहिए, ये बताइए सच में कभी आप गए और क्या मांगा, आप सबको बता रहे हैं क्या मांगने की इच्छा रखते हैं, ये बताइए कभी हमेशा डिमांड चेंज होते रहते हैं, कुछ पांच डिमांड बताइए,
बच्चे की डिमांड हो जाते हैं, बच्चा भी है ठीक नहीं है तो इच्छा आएगी,
सेम की होगी इधर की होगी,
और आप बताइए कुछ उधर से कोई बोलने का,
कृपा मांगते हैं सर,
स्वास्थ्य भी मिल गया, अच्छा परिवार भी मिल गया, अच्छे गुण भी मिल गए, एक शब्द में बोल दिया कृपा दे दो, शायद उसी वजह से यहाँ बैठे आज, और आप बताइए पीछे कोई, आप बताइए हमारे रिश्तेदार बोलेंगे भगवान नहीं है, लेकिन जब खतरा आता है तो बोलते हैं राम का नाम लो सब ठीक हो जाए, डर तो रहता है। तो कई स्तर है मंदिर जाने के, पूजा करने के। पहला है, इसे बोलते हैं क्रमिक विकास, क्रमिक विकास बुद्धि का। कुछ लोग भय के कारण पूजा करते हैं, यदि भगवान को नहीं मानोगे तो सदा के लिए नरक में यातनाएं भोगोगे। ऐसे बहुत सारे धर्म है जो डराते हैं, अगर नरक में नहीं जाना तो ऐसा करो, अगर बुरे से बचना है तो ऐसा करो। अभी कृपा भी क्यों मांगते हैं, कृपा बोले कृपा मांगते हैं, क्यों मांगते हैं, ताकि सब अच्छा हो जाए। अच्छा क्यों हो, ताकि बुरा ना हो, बुरे से डर लगता है। भाई ये पहला स्तर है किसी के पास भक्ति करने का, कोई भय से भक्ति करे। दूसरा स्तर है लाभ से, कुछ फायदा हो, कुछ धन की आकांक्षा है, किसी चीज की आकांक्षा है, इच्छा है। कल कोई तो बात कर रहे थे कि वो दीवार गिरा दिया, कल कोई बोल रहे थे, कौन बोल रहे थे आप बताओ। तो एक संत ने दीवार गिरा दिया, उसके बारे में क्या चर्चा करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या स्थिति है उनकी, कौन है। अक्सर लोग ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो कुछ तो जादू से कुछ आपके जीवन में कुछ कर दे, आपकी बीमारी ठीक कर दे। अरे उसके पास गए, उसने हाथ लगाया, मेरा कैंसर ठीक हो गया। अरे ये व्यक्ति तो 3 साल से ठीक ही नहीं हो रहा था, उसने हाथ लगाया सर पे और जादू हो गया, ठीक हो गया। अरे उसके पास गए तो हाथ से सोना प्रकट कर दिया। अरे उसके पास गए तो उसने जो मांगो वो दे देता है सामने। अरे उसके पास गए तो वो अमेरिका में पड़ी हुई चीज अपने हाथ में सामने ले आता है। लेकिन कोई बुद्धिमान व्यक्ति है वो धर्म जो है लाभ की आकांक्षा से नहीं करता, क्योंकि ये जो अनेक शक्तियां हैं, अनेक जो सिद्धियां हैं, ये सिद्धि होने से कोई भगवान नहीं मिलता। क्योंकि जब लाभ की बात आती है तो लाभ तो कोई योगी, कोई सिद्धि पुरुष वो भी दे सकता है। उसके पास जाओगे वो अपने जादू से कुछ दे देगा, उसे हम भगवान नहीं बोलते। तो हम लाभ के लिए करें तो बिजनेस हो गया। लोग तिरुपति बालाजी में जाते हैं और मांगते हैं कितना कुछ, वो तो धंधा हो गया, बिजनेस हो गया, व्यापार हो गया। अगर कोई माता पिता के पास आया और सेवा करे ये बोल के कि मैं तुम्हारी सेवा करूंगा अगर तुम मुझे धन दोगे, तो पिता को कैसे लगेगा, ये मुझसे प्रेम करता है धन के लिए, वो तो व्यापार हो गया। चलो ठीक है, कोई भय नहीं, धन नहीं, लाभ नहीं, तो तीसरा कोई बोलता है कर्तव्य। ये थोड़ा समझना है, थोड़ी अच्छी चीज है। यस्तु आत्मरतिर्वस्या आत्मतृप्तस्य मानवः, भगवान बोलते हैं जो संतुष्ट है जीवन में वो मेरी पूजा किसलिए करता है, केवल ड्यूटी से, कि चलो भगवान ने इतना कुछ दिया है, हवा दिया है, पानी दिया है, जीवन इतना चलाया है हमारा, कभी तो भजन कीर्तन कर लेना चाहिए। तो अक्सर लोग भजन कीर्तन उससे भी करते हैं, लेकिन भगवत गीता या श्रीमद् भागवत हमको धर्म के ऐसे स्तर पे ले जाता है जहां पे हम भगवान की पूजा, एक चौथा स्तर है, सबसे ऊंचा स्तर, वो है प्रेम, शुद्ध प्रेम। हे भगवान मुझे देखिए, पढ़िए, कोई पढ़ेगा इसमें जोर से, कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर पढ़ेगा इसको, कोई खड़ा होकर पढ़िए इसको, लाओगे आप पढ़िए जोर से।
हे भगवान मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है और ना ही मैं सुंदर स्त्री, अनेक अनुयायियों अथवा सुंदर कविता रचने का इच्छुक हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि जन्म जन्मांतर तक मुझे आपकी भक्ति प्राप्त हो।
मतलब कुछ भी नहीं चाहिए, अरे आप मेरा धन छीन के मुझे गरीब बना तो भी चलेगा। बताइए कितने लोग ऐसे हैं भगवान के सामने ऐसा बोल सकते हैं कि आप मेरा धन ले लो। एक तो लोग है, स्वास्थ्य भी ले लो, अनुयायी भी ले लो, पूरी दुनिया मुझ पत्थर मारे, पूरी दुनिया मुझ पे थूके, लेकिन फिर भी मैं भजन करूं, ये कैसे स्तर है। ठीक है भजन तो करूंगा, लेकिन मेरे को भी तो सुरक्षा रहनी चाहिए, ये कैसे स्तर है। सब कुछ ले लो, कुछ कुछ भी नहीं चाहिए लेकिन शुद्ध प्रेम चाहिए, केवल आपकी सेवा करनी है। कोई अगर आपका पैसा बोले तो वो व्यक्ति दिल जीत लेता है, ये सबसे उत्तम स्तर है। न धनम न जलम न सुंदरी कविता बाजदीशामी मम जन्मनी जन्मनीश्वरी भवता भक्ति अमृतकी जन्मनी जन्मनीश्वरी जन्म जन्मांतर तक बस आपकी सेवा करनी है। अरे जन्मों जन्मों तक उधर प्रभु जी बोले मुझे मोक्ष चाहिए, ये व्यक्ति बोल रहा है मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, जन्म जन्मों तक मुझे इसी दुखाले में सड़ने तो चलेगा। अगर आप किसी घोर अंधकार कोयले की खान में पड़े हैं तो सोचते होंगे कभी तो यहां से बाहर निकल के अच्छी हवा में सांस लूं, लगता होगा ना। हर कोई सोचता है कभी तो मोक्ष मिलेगा। तो आपको आज ये सरप्राइज देता हूं कि यहां पे हम मोक्ष का ज्ञान भी नहीं दे रहे, ऐसा ज्ञान दे रहे हैं कि मोक्ष को भी लात मारते हुए जन्म जन्मांतर तक इस जगत में पड़े हुए भक्ति करेंगे। अगर भगवान को चाहिए कि लाखों 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 करोड़ों करोड़ों जन्मों तक यहां पड़े पड़े भगवान का कीर्तन करें तो वो करेंगे, ऐसा प्रेम। अगर भगवान को चाहिए अग्नि में डालो, पहाड़ से नीचे फेंको, दरिया में डुबा दो, लेकिन भगवान का कीर्तन होना चाहिए। ये कैसी भक्ति है, ये कैसा पहाड़ पर। हम में से हर कोई इच्छुक होता है, जो कोई परेशान है भाई जल्दी से बस मृत्यु आ जाए और मोक्ष मिले, लेकिन यहां तो हम मोक्ष को भी लात मार रहे हैं। अरे मोक्ष क्या, जितनी स्थिति है उससे भी बुरी स्थिति में डाल दो भगवान, अगर उससे आपको आनंद मिलता है, ये कैसा प्रेम। कल एक भक्त आए थे, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछ रहे थे, बोल रहे थे कि आप तो जब से लेक्चर दे रहे हैं पिछले 3 दिन से आप तो दुखाले 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 बोलते जा रहे हैं, आपको सच में लगता है इतनी दुख भरी जगह कौन, कोई तो बोले थे ना, बड़ा अच्छा प्रश्न डॉक्टर ने आए नहीं ना आए तो बड़ा अच्छा प्रश्न पूछे, बोले ये कैसा तो दुख से भरा हुआ है क्या, कुछ अच्छी चीजें भी तो है। मैं बोला ये तो उस प्रकार हो गया जैसे आपको गुलाब जामुन खिला दें, कल गुलाब जामुन खा रहा सब खाया, गुलाब जामुन बहुत रसीला है, बहुत रस है उसके, लेकिन उस गुलाब जामुन के अंदर कंकर भरे पड़े। तो गुलाब जामुन तो है, मानते हैं इस दुनिया में कुछ अच्छी अच्छी मीठी मीठी चीजें भी हैं। वो बोल रहे थे अरे यहाँ पे भी लोगों में प्रेम है, दोस्ती है, मित्रता है, तो वो तो ऐसा हो गया गुलाब जामुन में रस है, लेकिन वो रस कैसा, उस रस के अंदर पत्थर भरे पड़े हैं, जैसे ही आप उसको काटते हैं वो पत्थर की जो कचरा है वो मिट्टी है वो में आ जाता है। मैं बोला इस जगत का सुख तो वैसा है कि थोड़ा जो सुख है उसमें जैसे कि गुलाब जामुन को आपने चखा और अंदर मिट्टी या कचरा निकला, दिखने में लगा अरे कितनी अच्छी चीज है, इस जगत में भी कुछ सुख है, लेकिन जैसे ही उस सुख को भोगने के लिए गए जब काटा तो अंदर से कचरा मुंह में आ गया, थोड़े दिन का सुख था बाद में फिर दुख, ये कैसा सुख हुआ। लेकिन यहां पे ऐसा बता रहे हैं कि उस प्रेम के कारण इस जगत में मैं करोड़ों करोड़ों जन्मों तक रह सकता हूं, ऐसा प्रेम ऐसी भक्ति उस स्तर पे लेके जा रहा। अक्सर लोग अध्यात्म में आते हैं शांति मांगने के लिए, जीवन शांत हो जाए, कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं ध्यान लगाते हैं, किस लिए, जब ध्यान लगाते हैं तो मन शांत हो जाता है, मन के सब विचार ठंडे हो जाते हैं, सब विचार शून्य हो जाते हैं। सुना होगा आपने अक्सर कभी ध्यान लगाते हैं बोलते हैं ध्यान लगाओ और मन को विचार शून्य कर दो, लेकिन गीता में लिखा है मन को विचार शून्य करना संभव ही नहीं है, मन को सभी विचारों से मुक्त करना संभव ही नहीं है। नहीं कश्चित शर्म भी जादू पृष्ठीय कर्म कर, तो फिर क्या, तो अगर मन शून्य नहीं होगा तो शांति कैसे प्राप्त होगी, सारे अवांछित विचारों से कैसे मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो भगवद गीता हमें धर्म के ऐसे स्तर पर लेके जा सकती है शुद्ध प्रेम में, जिसमें भक्त प्रेम में इतना 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 प्रफुल्लित हो जाएगा, इतना उसका मन प्रेम से भर जाएगा कि उसको अपने जो ऑब्जेक्ट ऑफ लव है, जिससे वो प्रेम करता है, उसके अलावा और कुछ विचार ही नहीं आता। उसे बोलते हैं सबसे उत्तम ध्यान। उस शुद्ध प्रेम के बारे में शास्त्र बता रहे हैं, गीता और भागवत में चर्चा करी है। तो वो भगवान से वो शुद्ध प्रेम करना है, वो भगवान के बारे में शास्त्र क्या बोलते हैं, कल हमने इसके ऊपर चर्चा करी थी। उस भगवान की परिभाषा क्या है, कल ही चर्चा किए थे हम। देखे थे वो भगवान जो सभी चीजों के स्रोत है, नियंत्रक है, स्वामी है, भोक्ता है, शर ऐश्वर्य पूर्ण है, जिनके पास सब धन है, जिनके पास सब बल है, सौंदर्य है, ज्ञान है, प्रसिद्धि है, वैराग्य है, ऐसे भगवान वो कौन है, उनके बारे में शास्त्र क्या बोलते हैं। सभी के स्रोत पहली चीज भूमि आपो दलो वायु खम मनो बुद्धि एवजा, जो अष्ट धातु है, जो पांच प्रमुख स्थूल शरीर बना हुआ है, जैसे उसके स्रोत भगवान कृष्ण है। भगवत गीता में बताया भूमि आपो नलो वायु खम मनो बुद्धि एवजा अहंकार इति यम्ने, भिन्न प्रकृति अष्ट धातु, मेरी प्रकृति है, मेरी शक्ति है, भगवान बोलते हैं। सभी के स्रोत है भगवान। अभी थोड़ा भगवान की लीला में जाएंगे। देखिए अभी के बाद जो भी हम डिस्कस करेंगे, कल हम बात कर रहे थे श्रद्धा और अंधविश्वास में अंतर है। अभी के बाद आज के दिन जो भी हम चर्चा करेंगे, आपसे विनती है अपने दिल को बाहर रख दीजिए, केवल अपने दिमाग को यहां पे रखिए। क्योंकि अगर दिल को यहां रखेंगे तो बहुत सारी चीजें समझ चोट लगेगी, बहुत सारे विचारों में चोट लगेगी। लेकिन अगर दिमाग से सोचेंगे, कॉमन सेंस से सोचेंगे, ज्ञान से सोचेंगे, शब्द प्रमाण से विचार करेंगे, तो समझेंगे सत्य क्या है, तभी भगवान की परिभाषा को समझ पाएंगे। क्योंकि यहां दिमाग से सोच रहे हैं, दिल से नहीं। और जब दिमाग में श्रद्धा बैठ जाएगी तो दिल से भक्ति करेंगे। जो दिमाग में जब ज्ञान बैठ जाएगा तो उस ज्ञान को दिल में उतारेंगे और अपने दिल को, प्रेम को भगवान को अर्पण करेंगे। तो आज है दिमाग का काम, कल है दिल का काम। कल दिल को लेके आना, आज केवल दिमाग को, दिल को घर भेज। क्योंकि दिल से भाव तक सोचेंगे तो सोचेंगे अरे ये सब क्या हो गया, हमारे तो सब विचार पलट डाले। पहले तो हम कुछ सोचते थे, आप कुछ बोल रहे। पहला चीज भगवान जो सबके स्रोत है, जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में, मथुरा में जन्मे और उसके बाद वृंदावन में गए, तो माता यशोदा की शरण में, जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, माता यशोदा की शरण में बहुत सारी बाल लीलाएं करी हुई, बहुत सारी लीलाएं। एक दिन भगवान ने क्या खा लिया, मिट्टी खा ली, सबको मालूम था मिट्टी खा ली। तो बलराम जी ने और अनेक लोगों ने मैया को आके शिकायत की कि अरे आज तो हमारे कन्हैया ने मिट्टी खा ली। तो मैया को बड़ा गुस्सा है, अगर आपका बालक भी मिट्टी खा ले तो गुस्सा तो आए, है कि नहीं। तो मैया को बड़ा गुस्सा आया और बोला कि तुम मिट्टी खाई है। तो कन्हैया ने बोला अरे मैं तो मिट्टी नहीं खाई, खोल के दिखाओ। मुंह खोल के दिखाया, मुंह खोल के दिखाया तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड मुख के अंदर, पूरा ब्रह्मांड। अभी हम बात कर रहे हैं शब्द प्रमाण, शास्त्र के अनुसार वो शास्त्र बताते हैं कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड छोटे बालक कन्हैया के मुख में था। अरे ब्रह्मांड में देखने अनेक अनेक प्रकार के प्लैनेट्स हैं, और उसमें वो पृथ्वी को भी देख रहे हैं, सूरज को भी देख रहे हैं, चंद्रमा को भी देख रहे हैं, तारे भी दिख रहे हैं। सोचिए बच्चे के मुंह में तारे, चंद्रमा, सूरज सब कुछ दिख रहा है, और तो और खुद को भी उस चेहरे मुंह के अंदर देख, और खुद को नहीं उस मुंह के अंदर खुद को कन्हैया का मुंह देखते हुए देखा। ऐसा कैसे पूरा अचंभित हो गई, आश्चर्यचकित रह गई, सोचने लगी ये मेरा पुत्र है या भगवान है, ये मेरे पुत्र है या देवता है, ये मेरा पुत्र है कोई जादूगर है, कौन है, ऐसा कैसे संभव है। वही भगवान जब गीता में अर्जुन ने बोला अरे भगवान आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभु मैं सबका स्रोत हूं, मत्तः परत्रम नान्यत् मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, सारे देवता अहम ही सर्व देवानां मैं ही सब देवताओं का स्रोत हूं, ब्रह्मा मुझसे आए हैं, शिव मुझसे आए हैं, इंद्र मुझसे आए हैं, सूर्य मुझसे आए हैं, वरुण देव मुझसे आए हैं, वायु मुझसे आए हैं। अर्जुन बोले अरे आप तो बड़ी बड़ी टीके मार के चले जाएंगे, लोग हंसेंगे, लोग बोलेंगे अरे कैसी कैसी बात बोलते, कुछ प्रूफ दीजिए। अर्जुन बोले मुझे तो पूरा विश्वास है लेकिन लोग बोलेंगे कुछ प्रूफ नहीं दिया, कुछ प्रमाण नहीं दिया, जरा दिखाओ ऐसा रूप दिखाओ जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड देख सके। तो भगवान ने अर्जुन को 11वें अध्याय में पूरा विराट रूप प्रदर्शन किया, देख रहे हैं पूरा विराट रूप। और भगवान ने बोला क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, क्योंकि तुम मुझसे द्वेष नहीं करते, क्योंकि तुम मेरी सेवा करते हो, तो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, हर कोई इसे नहीं देख पाएगा, युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में सब लोग नहीं देख पाए। भगवान बोले आज तक ये रूप किसी ने नहीं देखा है। एक बार पहले भगवान शांति दूत के रूप में धृतराष्ट्र के पास गए थे तो भी एक रूप दिखाया था, लेकिन इतना विशाल रूप नहीं दिखाया। बोले आप मेरे भक्त हैं, आप ही देख सकते हैं। और आजकल अनेक बाबा अनेक स्वामी अपने आप को भगवान बोलते हैं, कोई भगवान बोले तो बोलिए जरा अपना विराट रूप दिखाइए, और अगर आप उनको बोले कि अपना विराट रूप दिखाइए तो क्या बोलेंगे मालूम है, अरे आप तो मेरे भक्त नहीं हो, आपको भक्त मैं आके चलिए, कैसे जवाब देंगे आप। क्योंकि अर्जुन को भी तो भगवान कृष्ण बोले अरे केवल तुम दे सकते हो, हर कोई नहीं दे सकता। अगर कोई व्यक्ति आपको बोले मैं भगवान हूं, कोई साधु आके बोले मैं भगवान हूं, कोई संत के कपड़े पहन के बोले मैं भगवान हूं, मसीहा हूं भगवान का, आपकी रक्षा के लिए आया हूं, तो आप बोले अरे विराट रूप दिखा दिया, तो बोले अरे विराट रूप वो तो हम केवल अपने भक्तों को दिखा रहे, तो क्या बोलेंगे। और ऐसे भक्त भी खड़े हो जाएंगे जो बोलेंगे हमने स्वामी जी का विराट रूप देखा है, ऐसे खड़े करना तो बहुत आसान बात नहीं, मुश्किल बात नहीं, ऐसे भी खड़े हो जाएंगे। तो उसके लिए तो एक नहीं काफी फैक्टर है, काफी चीजें हैं जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं भगवान कौन है। षड ऐश्वर्य पूर्ण, छह ऐश्वर्य पूर्णता में होने चाहिए। पहला है धन, कोई व्यक्ति संपूर्ण धन का मालिक। देखते हैं भगवान लक्ष्मी जी भगवान की सेवा कर रहे हैं, भागवत में वर्णन किया गया है। अभी आप सबको मालूम होगा लक्ष्मी का स्वभाव क्या होता है, चंचल हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति घबराता है कि लक्ष्मी चंचल होती है, एक जगह पे ज्यादा देर नहीं टिकती, बहुत संघर्ष करना पड़ता है लक्ष्मी को टिकाए रखने के लिए, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन वो लक्ष्मी जी बहुत चंचल है, वो भगवान के चरणों में अनंत काल से सेवा कर रही है, एक ही सेवा कर रही है, उससे कब शुरू हुआ वो सेवा उसका कुछ ज्ञान नहीं। और जब उनको बोलो अभी ये सेवा बहुत हो गया तो बोलती है अभी अभी तो ये सेवा शुरू की है। तो जो बहुत चंचल है एक घर में ज्यादा समय नहीं टिकती, भगवान के चरणों में निरंतर बैठी है और सेवा करनी है और छोड़ने को तैयार नहीं अनंत काल से, वो लक्ष्मी के मालिक असली लक्ष्मीपति कौन है, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण। अब कोई व्यक्ति बोलता भी है कि मैं भगवान हूं, बोलता भी है कि मैंने विराट रूप दिखाया अपने भक्तों को, भगवान ने कभी तपस्या नहीं करी धन प्राप्त करने के, भगवान तो शुरू से सभी धन के मालिक थे, भगवान ने कोई शिष्य नहीं थे जो उनको धन ला के दिया करते थे। आजकल बहुत सारे बाबा हैं जो धन लेके उनके शिष्य सब धन ला के देते हैं और धनवान जाते हैं, कहते हैं आजकल सबसे बड़ा बिजनेस चलना हो तो संत बन जाओ, सुधारेगा अच्छा बिजनेस बन जाएगा, बहुत धन मिल जाएगा, बहुत धन राशि इकट्ठी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अंधविश्वास से कहीं घर लगाने को तैयार है, वो भी एक चीज है। सबसे बढ़िया बिजनेस है। एक बार वो कहीं तो मैं पढ़ रहा था अखबार में न्यूज में पूरा रेटिंग आया था कौन कितना कमाता है। तो धन ठीक है, धन बल। भगवान ने 7 वर्ष की उम्र में पूरा गोवर्धन पर्वत अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पे उठाया 7 दिन 7 रात के लिए। जब इंदिरा का उसके इंदिरा ने अपनी पूरी शक्ति से ऐसा प्रहार किया वृंदावन पे, ऐसा प्रहार किया, वो बारिश नहीं थी, बारिश की जगह बारिश के खंभे गिर रहे थे, खंभे कोई पानी की बहाधार नहीं बह रही थी, पूरा तूफान आया था। इंदिरा का प्रकोप, बॉम्बे की बारिश तो कुछ भी नहीं उसके सामने, इंदिरा का प्रकोप था। तो भगवान ने उठा, इसे बोलते हैं भगवान। कोई ये किसी जिम में जाके बॉडी बिल्डिंग नहीं किए थे अपना बल बनाने के लिए, 7 साल की वर्ष उम्र में कोई बॉडी बिल्डिंग नहीं करता जाके, बचपन से अरे छोटे पैदा होते ही एक बड़ी राक्षसी पूतना को मार डाला, केवल उसके स्तन से दूध पीने के बहाने उसकी जीवन शक्ति ही खींच डाली छोटे नवजात शिशु के रूप में। इसे बोलते हैं याद रखना, ये सब लीला हम शास्त्रों के आधार पर चर्चा कर रहे हैं और शास्त्रों में श्रद्धा हम कल बना चुके हैं, कल उस पर हम चर्चा कर चुके करी थी। अभी भी किसी को उस पर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, बोलते हैं जो डाउट है ना, जो शंका है ना, वो एक राक्षस के रूप में, अगर उसको नहीं मारा तो वो राक्षस बहुत बड़ा हो जाता है और आदमी को खा डालता है। इसलिए इस कोर्स में पहला चीज ये है अपनी शंका को दूर करना। कुछ भी डाउट है, कुछ भी शंका है तो उसको प्रश्न पूछ के दूर करना, क्योंकि एक एक दिन में जब श्रद्धा नहीं बनेगी तो अगले दिन की कथा समझ में नहीं आएगी। तो बल। तीसरा है समुद्र, भगवान का सुंदर रूप। कहते हैं जब राजसूय यज्ञ हो रहा था और राजसूय यज्ञ में महाराज युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ का आयोजन किया तो उसमें अनेक देवता लोग आए थे, ब्रह्मा भी आए थे, शिव जी भी आए थे, इंद्र भी आए थे, अनेक प्रकार के देवता, अनेक प्रकार के ऋषि मुनि आए थे, पूरे ब्रह्मांड के जो प्रमुख ऋषि थे वहां मौजूद थे, हर देश से लोग आए थे, हर प्लेनेट से लोग आए थे। सोचिए ऐसी सभा है, ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि बैठे हैं, ऐसे ऐसे देवता बैठे हैं, अप्सराएं बैठी हैं, गंधर्व बैठे हैं, सिद्ध लोक के प्राणी बैठे हैं। और उस समय जब भगवान कृष्ण वहां प्रवेश किए और भगवान कृष्ण जैसे ही अपने रथ से उतरे और सबकी नजर भगवान कृष्ण पे पड़ी, सोचिए एक व्यक्ति आता है और उसकी सुंदरता देख के सब लोग, सबकी आंखें उसी पे और सबके मुख से एक ही बात निकली कि ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि का जो सारी सुंदरता है वो इस व्यक्ति में डाल दी। सबके मुख से एक ही चीज निकली, ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि की जो सबसे अच्छी सारी की सारी सुंदरता इस व्यक्ति में समा गई है। बस सब लोग देखते ही रह गए। कोई अगर सुंदर होता है, अभी देखिए हम लोग सोचते हैं ये पुरुष कितना सुंदर है, ये स्त्री कितनी सुंदर है, छोटे जब मकोड़े होते हैं हम भी सोचते हैं ये मकोड़े कितनी सुंदर है, लेकिन कोई हिरण होता है तो हिरण भी हिरनी को देखता है बोलता है कितनी सुंदर है, घोड़ा भी घोड़ी को देखता है तो कितनी सुंदर है, गधा या गधी होती है तो भी आपस में बोलते हैं कितने सुंदर है, किसी गधे को देख के हमको तो नहीं लगता, कोई मानव समाज की स्त्री एक गधे को देखे तो पागल नहीं लगती है, हाँ सुंदर गधा है। तो अनेक जानवर है वो आपस में एक दूसरे की सुंदरता को अनुभव कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे योनि की सुंदरता को अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन भगवान कृष्ण की सुंदरता के बारे में ऐसा बताया है कि पूरा का पूरा वृंदावन जितने भी जीवते चाहे मोर हो चाहे गैया हो चाहे हिरण हो जितने भी पक्षी हो बोले ऐसी सुंदरता थी उनका ऐसा प्रभाव था कि जब वो बांसुरी बजाते थे तो जितनी भी स्थिर वस्तुएं थी जो स्थिर चीज थी वो बहने लगती थी जो पत्थर थे वो पिघल जा रहे थे जो बहती हुई नदियां थी यमुना थी वो स्थिर हो जाती थी सारे के सारे जीव आकर्षित हो जाते थे ऐसी सुंदरता किसी के सौंदर्य के बारे में बोले आप अगर किसी को सुंदर बोलेंगे तो उस सुंदर में क्या क्या लक्षण होने चाहिए जरा कुछ उदाहरण दीजिए बोले कि ये व्यक्ति सुंदर है सुंदर व्यक्ति के क्या लक्षण होने चाहिए हर एक बॉडीली पार्ट परफेक्ट होना चाहिए ऐसा नहीं कि आंखें बहुत सुंदर है नाक लंबी कान इतने बड़े सोचिए चेहरा बहुत सुंदर है कान इतने बड़े हर एक चीज परफेक्ट होनी चाहिए और क्या चीज इंसान को सुंदर बनाती है मैं इस समय कैरेक्टर नहीं बोल रहा स्वभाव नहीं बोल रहा सिर्फ शारीरिक बात कर रहा हूं
आचरण
फिलहाल कैरेक्टर के आगे मैं बोल दिया आचरण तो बाहर रख दो सिर्फ शारीरिक चीज तो हर एक बॉडीली पार्ट जो अंग है वो सुंदर होना चाहिए नाक आंख मुंह दांत ऐसा नहीं कि सब कुछ सुंदर है दो दांत निकल रहे हैं बाहर बड़े से ठीक है सुंदरता है तो हम सब में कुछ ना कुछ डिफेक्ट रहता है हम सोचते हैं अरे यार सब ठीक है थोड़ा ये ठीक होता है ऐसा थोड़ा काम थोड़ा ठीक होता है ऐसा थोड़ी नाक पतली हो जाए हर कोई अपने ऐसे से सोचता है थोड़ी आंख बड़ी हो जाए थोड़ी आंख लंबी होती है कंप्लेक्शन और क्या सब लोग सौंदर्य के बारे में सोचते हो चेहरा देखते होंगे अपना सोचते हो कि ऐसा हो जाए ऐसा हो तेज ये भी बड़ी अच्छी चीज है तेज शरीर का तेज कुछ लोग का शरीर का तेज रहता है हम जब अपने कॉलेज में थे तो वहां एक भक्त प्रचार करने आते थे वो जैसे ही कॉलेज में प्रचार करने आते थे उनको देख के बस इतना तेज है इसके चेहरे पे ऐसे लगता है कोई दिव्य लोग से आ रहे हैं और क्या ओके आवाज बोल गया लेकिन फिर भी थोड़ा शरीर पे ही सीमित रही है वाणी तो और अलग अलग कर क्वालिटी को अभी हम सौंदर्य की बात कर रहे हैं वो भी शरीर का अंग हो गया हाइट बोल लिया कभी कभी किसी की स्पेशल ब्यूटी स्पॉट्स करते हैं सुना कभी आपने ब्यूटी स्पॉट किसी को कुछ ब्लैक मार्क रहेगा है कि नहीं चलो ठीक है अंग हो गया उसका स्पेशल कुछ मार्किंग हो गया शरीर पे कुछ चिन्ह हो गए और क्या जल्दी बोलिए टाइम क्या तो अभी हमने तीन चीज बोला उसका अंग उसके अंग अलग अलग प्रकार के उसके शरीर पे कुछ खास चिन्ह तेज चौथी चीज सौंदर्य में बहुत जरूरी है कि अगर कोई सुंदर है तो हमेशा सुंदर रहना चाहिए जो आज सुंदर है वो कल सुंदर नहीं रहेगा या आज से पांच दस साल बाद सुंदर नहीं रहेगा चेहरा मुरझा जाएगा बुढ़ापा आ जाएगा तो नव यौवनम वो भी एक चीज है हमेशा के लिए यौवन है अगर किसी को ऐसा मिल जाए तो उसी को कितना घमंड हो जाएगा उसको नव यौवनम कभी बुढ़ापा ही नहीं आएगा चलो ठीक है नव यौवनम एक और चीज व्यक्ति को सुंदर बना दे ड्रेसर कपड़ा कैसा पहना है आप वो बोल रहे हैं ठीक है वो भी है वो मान लिया और एक और चीज देखिए सुंदर दिखने के लिए हर समय स्वच्छ दिखना चाहिए अगर हम सब चाहे कितने भी सुंदर दिखते हो जब सुबह बिस्तर से उठते हैं तो चेहरा सुंदर नहीं दिखता सारे छिद्र गंदे होते हैं है कि नहीं सारे छिद्र गंदे भगवान कृष्ण के 64 गुण बताए गए हैं उन 64 में से 5 या 6 गुण सुंदरता के ऊपर ही है पहला है उनका एक एक अंग परफेक्टली डिजाइन कोई भी अंग में कुछ डिफेक्ट नहीं है उनके एक एक अंग पे स्पेशल चिन्ह है उनके हाथ पे स्पेशल चिन्ह है उनके आठ अंग कमल के जैसे हैं, उनकी दो आंखें, उनके दो हाथ ऐसे लगता है पूरा खिला हुआ कमल, उनके दो चरण खिला हुआ कमल, उनकी नाभि एक खिले हुए कमल के समान है। वो खास चिन्ह है। उनका तेज और उनका बोलते हैं नव यौवन अद्वैतम अच्युतम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च नव यौवनम जो कभी 15-16 से ज्यादा दिखते ही नहीं। अरे भगवान 100 साल 125 साल यहाँ रहे लेकिन 16 साल से ऊपर नहीं दिखते। आप सोचिए 125 साल का व्यक्ति 16 साल का दिखे नव यौवनम। आज की तारीख में अगर कोई बोलता है वो भगवान है तो बोलिए अपना नव यौवनम रूप दिखाई दे, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने आप को भगवान बोलते हैं। अगर भगवान है तो उनका रूप में बुढ़ापा नहीं दिखना चाहिए। और आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो मंदिर हैं, ऐसे मंदिर हैं जहां पे ऐसे व्यक्तियों की पूजा होती है जो किसी भी दृष्टि से नव यौवनम नहीं दिखते लेकिन उनको लोग भगवान बोलते हैं। तो कैसे बोलेंगे हम भगवान? भगवान तो ऐसे है जो नव यौवनम होने चाहिए, एवर फ्रेश, हमेशा फ्रेश रहते हैं, कभी मुरझाते नहीं। ये भगवान के लक्षण है, सौंदर्य। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमान्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति। एक एक अंग दूसरे अंग का काम कर सकता है। कई भगवान को भोजन खिलाते हैं तो सोचते हैं अरे भगवान ने खाया तो है, भोग लगा दिया। अरे भगवान अपनी आंखों से खा सकते हैं। एक एक अंग दूसरे अंग का काम कर सकता है। ये एक ऐश्वर्य है। और कौन सा ऐश्वर्य? ज्ञान, भगवत गीता। ऐसा ज्ञान आप देखिए, अनेक गीता पे इतना कमेंट्रीज मिलता है मार्केट में। प्रभुपाद जी बोले 5,000 से ऊपर लोग गीता पे अपना तात्पर्य लिखे हैं। ऐसा पुस्तक हर कोई अपना तात्पर्य देना चाहता है गीता पे। ऐसे भी तथाकथित भगवान जो अपने आप को भगवान बोलते हैं अपनी कोई ऐसी पुस्तक नहीं लिख सकते जो सालों सालों तक चलेगी, सैकड़ों सालों तक चलेगी, वो भी गीता का ही सहारा लेते। ऐसा ज्ञान दिया, ओरिजिनल, ओरिजिनल बुक ऑफ नॉलेज। और सबसे बड़ी बात तो ये है उस गीता का हमारे जीवन में प्रभाव क्या होता है। अरे कोई भी अपने आप को भगवान बोलेगा या भगवान का मसीहा बोलेगा या साधु बोलेगा या संत बोलेगा, बात तो ये है उसके मुख से निकला हुआ ज्ञान का हृदय पे क्या परिवर्तन होता है। प्रभुपाद जी से, जब प्रभुपाद जी अमेरिका में गए, पाश्चात्य देश में गए, तो किसी ने पूछा अरे स्वामी जी, बहुत स्वामी आए अमेरिका में, उन्होंने बड़े बड़े जादू किए, आप भी चल दिखाइए। बोले मेरा सबसे बड़ा जादू क्या है कि यहाँ पे रहने वाले जो हिप्पी हैं, जिनका करैक्टर बिल्कुल गिर चुका है, चरित्र बिल्कुल नीच हो चुका है, ऐसे हिप्पियों को मैंने I have turned hippies into happies, एक खुश भक्त ने बदल दिया, सन्यासी बना दिया, गोस्वामी बना दिया, अपने इंद्रियों को पूरा वश करके पूरे दुनिया को भक्त बनाए हैं, ऐसा हृदय परिवर्तन हो गया। अरे वो लोग जो पूरी तरह से अश्लीलता में डूबे हुए थे, पूरी तरह से नशे में डूबे हुए थे, अगर आपको बोला जाए कल से आप भोजन खाना बंद कर दो कैसा लगेगा आपको? आपको बोला जाए इस्कॉन में रहना मतलब कल भोजन नहीं खाना। तो जितना अस्वाभाविक आपको भोजन ना खाना लगेगा उतना अमेरिका के लोगों को अश्लीलता छोड़ना, नशा छोड़ना उतना ही अस्वाभाविक लगता। अरे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? मांस खाना कैसे छोड़ सकते? नशा कैसे छोड़ सकते हैं? स्त्री संग कैसे छोड़ सकते हैं? और ऐसे लोगों को उन्होंने परिवर्तन करके ये ज्ञान जो हृदय में परिवर्तन कर सके उसे हम बोलते हैं ज्ञान का ऐश्वर्य। भगवान ने वो गीता प्रसिद्धि भगवान जब भी द्वारका में रहते थे बहुत लीला है, एक छोटी सी लीला बताऊंगा। जब भगवान द्वारका में रहते थे तो ऐसे ऐसे लोग उनसे मिलने आते थे। भगवान मन के द्वार पे तो द्वारपाल था, वो भी कम आया था। ऐसे लोग आते थे, बोलते थे भगवान से मिलना है। ब्रह्मा जी आए, बोले आप बैठिए जरा, भगवान के पास समय नहीं है। शिव जी आए, इंद्र आए, और इंद्र जब आए तो जोर जोर से प्रार्थनाएं बोल रहे थे, बोले आप चुपचाप बैठ जाओ, भगवान अंदर बहुत बिजी है, उनको डिस्टर्ब मत करो। तो ऐसे ऐसे जीना है कि अरे भगवान से मिलने के लिए वरुण देव, वायु देव, इंद्र, किस जगह का मंत्री। अभी आप बताइए, कोई व्यक्ति से आप अस्पताल में आते हैं, डॉक्टर से मिलने जाते हैं, डॉक्टर की ओपीडी के बाहर बैठे हैं और लाइन लगी है, किसकी? पहला नंबर प्रधानमंत्री, दूसरा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, तीसरा वित्त मंत्री, ये मंत्री, वो मंत्री, वो मंत्री। आपसे पहले 100 लोग पूरा का पूरा जो सभा है मंत्रियों का सामने बैठे, डॉक्टर है कि नहीं? वैसे ही ऐसा प्रसिद्ध है। और फिर वही वैराग्य, ये सब होने के बावजूद भी भक्त के सेवक बनने को तैयार, अर्जुन के रथ पे सारथी के रूप में। सारथी कैसे चलाते हैं? सारथी को जो रथ पे बैठा होता है, वो अगर सारथी को जब इशारा करना हो कि जरा बाएं मुड़ो या दाएं मुड़ो, और युद्ध भूमि में इतना आवाज हो रहा होता है, इतना शोर हो रहा होता है, इतना लोग मर रहे हैं, खून खराबा हो रहा है, उसमें सारथी को अगर बोलना हो जरा दाएं मुड़ो या बाएं मुड़ो, तो सारथी को लात मारते हैं। सारथी को बाएं मुड़ना हो तो बाएं से लात मारते, दाएं मुड़ना हो तो दाएं से लात मारते। सोचिए, भगवान है, कोई ऐसा व्यक्ति है इस जगत का, बहुत धनी हो, सुंदर भी हो, बहुत विद्या विद्वान भी हो, बहुत बलशाली भी हो, बहुत प्रसिद्ध भी हो, और बोलेगा मैं आपका ड्राइवर बनता हूं, और फिर ड्राइवर को आपको मोड़ना हो तो दोबारा मारेंगे, राइट मोड़ना है तो राइट से मारो। अरे कोई बड़ा आदमी तो छोड़ो, कोई मामूली ड्राइवर भी सहन नहीं करेगा, अगर उसको बाद में मारोगे आप बाएं से और दाएं से। सोचिए, एक बार मारेगा पीछे उठ के और मारेगा, सोचेगा नहीं मारेगा। और भगवान को, और यहां अर्जुन हाथ नहीं मार रहे थे, लात मार रहे थे। ये भगवान का वैराग्य है। उनको कोई लोग बोलते हैं, अच्छा ये बड़ा की ये चीज बोलते हैं, भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं सबका सूत्र हूं, सारे देवता मेरे सेवक हैं। तो एक कोर्स में एक लेडी आई हमसे, बोली ये जरा कुछ घमंडी नहीं है कृष्ण भगवान, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अरे अध्यात्म मतलब अहम नहीं होना चाहिए, ये बार बार मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं सबका सूत्र हूं, मेरी सेवा करो, मुझे समर्पण करो। अगर आप गीता ध्यान से पढ़ेंगे ना, एक दिन आप बैठ जाइए, सुबह से रात तक गीता के 700 श्लोक पढ़िए, केवल अनुवाद, वो पढ़ते पढ़ते वो मैं शब्द इतना आएगा, वो सुन सुन के घृणा आ जाएगी, इतना मैं क्या हूं, क्यों करना भगवान को समर्पण। मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये मुझसे आया, ये मुझसे आया, उसमें मेरी शक्ति है, इसमें मेरी शक्ति है, आप मेरे अंश है, आप मेरे तुच्छ अंश है, मैं महान हूं। भगवान यही बोलते हैं, आप तुच्छ है, मैं महान हूं। सोचिए, कोई आपको बोलेगा, अगर सोचिए मैं ही यहां प्रवचन कर रहा हूं और आपको बोलूं आप सब बिल्कुल तुच्छ प्राणी है, मैं महान हूं, कोई उठ के आएगा अगले दिन के अगले शनि पार चले जाएगा? भगवान ऐसा बोलते हैं तो हृदय में चुभता है, अरे मैं। लेकिन अगर भगवान को अहम होता, अच्छा अभी बहुत सारी बात हम गीता के आधार पर ही प्रूव करते हैं कि गीता में ऐसा बोला है इसीलिए ऐसा। अरे ये तो वही बात होगी, कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान बोलना चाहता है तो उसके द्वारा लिखित शास्त्र लेके उसको भगवान प्रूव किया, ये क्या बड़ी बात है? आप समझ रहे हैं, कोई व्यक्ति बोलना चाहता है मैं भगवान हूं और वही शास्त्र लिखता है और उसी को लेकर बोलते हैं भगवान है, ये क्या बात होगी? लेकिन हम साथ साथ उस व्यक्ति का चरित्र नहीं देखते, वैराग्य, ये कोई अहम से बात नहीं कर रहे, ये दया से बात कर रहे, दया है। अगर कोई व्यक्ति धनी है और बोल रहा है अरे मेरे पास आओ मैं तुम्हें धन दूंगा, तो उसमें अहम क्या होगा? अगर एक पिता अपने पुत्र को बोल रहा है अरे घर पे रह, मेरी बात मान, मेरी शरण ले, मैं तुम्हारी सब जरूरतें पूरी करूंगा, उसमें अहम क्या होगा? वो तो सत्य ही हुआ ना। अगर कोई साधारण व्यक्ति बोल रहा है मैं बहुत सुंदर हूं तो उसमें तो घमंड होगा क्योंकि उससे भी सुंदर व्यक्ति है। लेकिन जो सच में सुंदर है, जो बोल रहा है मेरी सुंदरता से बढ़ के कोई सुंदरता नहीं है, उसकी सुंदरता से बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े बड़े पंडित उस सुंदरता से मोहित हो गए, कामदेव मोहित हो गए। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, जो कामदेव हर व्यक्ति को इस जगत में पागल करके रखे हैं वो कामदेव भगवान के सामने मोहित हो गए। अगर ऐसा व्यक्ति बोलता है अपनी सुंदरता के बारे में तो क्या परेशानी है उसको। तो चरित्र भी देखते हैं भगवान का वैराग्य। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे भगवान कृष्ण की पूजा, ऐसे भगवान कृष्ण के बारे में भगवद गीता और श्रीमद भागवत में बताया। फिर दूसरा प्रश्न ये आएगा भगवान के बारे में, हम बात कर रहे हैं भगवान कौन है, हमने भगवान कृष्ण को स्थापित किया या हम प्रमाण के साथ कि कैसे वो षड ऐश्वर्य से पूर्ण है, सबके स्रोत है। लेकिन प्रश्न आएगा, हमने तो सुना था कि भगवान निराकार है, हमने तो सुना था कि भगवान में कोई भगवान निर्गुण है, भगवान सगुण है निर्गुण, भगवान सकार है निराकार, परम सत्य सकार है निराकार। जब ये सुनते हैं कि अरे भगवान भी हमारे जैसा ही हो गए, ऐसा व्यक्ति भगवान कैसे हो सकता है, उस व्यक्ति को भगवान। अब सोचिए आप यहां जितने भी 60-70 लोग बैठे हैं, अगर आप, मैं बोलूं आपके पास पास वाला नेक्स्ट जो पर्सन बाजू में बैठा है वो भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे जैसा ही तो दिखता है, मेरे जैसा ही शरीर है, कल रात को मेरे जैसे ही गुलाब जामुन खा रहा था, ये कैसे भगवान हो सकता है। तो जो दिखता वैसे, लेकिन भगवान का रूप हमारे जैसा नहीं है, हमारा रूप भगवान के आशीर्वाद से उनके जैसा बनाया गया है। भगवान का रूप हमारे जैसा नहीं है, हमारा रूप भगवान के आशीर्वाद से वैसा बनाया गया है। भगवान सगुण है या निर्गुण है, साकार है निराकार है, अनेक शास्त्रों में अनेक वर्णन किया गया है। उदाहरण दिया गया है सूर्य का, जिस प्रकार से सूर्य और सूर्य की किरणें हैं, लेकिन सूर्य की जो किरण आ रही है, सूर्य में से जो तेज निकल रहा है, उस तेज के पीछे एक सूरज, एक प्लैनेट है, एक जगह है सूरज, जिसके शरीर से ये तेज निकल रहा है। ऐसे शास्त्र में बताया गया है कि भगवान कृष्ण के शरीर से भी तेज निकल रहा है, जो तेज निकल रहा है उस तेज की जो लोग पूजा करते हैं वो सोचते हैं भगवान क्या है, निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है, क्योंकि वो तेज से उनकी आंखें इतनी चमक है कि वो उस शरीर को देख नहीं पाते। ईश्वर परिषद ने लिखा है हिरण्मय न पात्रे न सत्यस्याभिहित मुखम, कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कृपया अपने शरीर का तेज हटाइए ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूं। अरे वैदिक शास्त्र तो छोड़िए, अनेक शास्त्र, ईसाई धर्म में भी भगवान के रूप की चर्चा की गई, भगवान की आंखें, भगवान मनुष्य रूप से मिलते जुलते हैं, मनुष्य भगवान की आकृति से बना है, ईसाई धर्म में लिखा है। कुरान ने, काफी मुस्लिम लोग ये प्रश्न पूछते हैं अरे आप मूर्ति पूजा करते हैं, आप भगवान के रूप को इस प्रकार से मानते हैं, लेकिन इस्लाम में लिखा है अल्लाह के चेहरे का वर्णन किया, अल्लाह की आंखें, चरण, हाथ, अंगुलियां, सिंहासन, हंसी का वर्णन किया है, जैसे कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूं भगवान की, कृष्ण की हंसी का वर्णन। तो उन्हीं के शास्त्र में उनके रूप का वर्णन किया गया और फिर बोलते हैं भगवान का कोई रूप निराकार है। वैदिक शास्त्रों में भगवान के, जो योगी लोग ध्यान लगाते हैं वो भगवान के रूप पे ध्यान लगाते हैं, परमात्मा का जो रूप हृदय में है उस पे ध्यान लगाते हैं। भगवान कृष्ण और बलराम जब भी गैयां चराने के लिए निकलते थे तो उनके जो गहने, इतना तेज था उनमें, बोलते हैं उनके एक गहने के एक एक मोती का तेज एक सूर्य के तेज को भी फीका कर दो, एक एक मोती का तेज सूर्य के तेज को फीका कर दे और उस मोती का तेज भगवान के शरीर के तेज के सामने फीका पड़ जाए, उस मोती का तेज भगवान के शरीर के तेज के सामने फीका पड़ता। तो ऐसा जब प्रभावशाली तेज सामने आता है तो लोग सोचते हैं कोई रूप तो है ही नहीं, यही तेज सब कुछ है, यही भगवान है, यही तेज। क्योंकि वो तेज इतना होता है कि भगवान के शरीर के दर्शन ही नहीं होते। इसीलिए शास्त्र में गीता में दिया है अव्यक्तम व्यक्ति महापन्न मन्यते माम बुद्धेर परम भाव जानन्तो मम अव्ययम् अनुत्तमम्। बुद्धिहीन मनुष्य मुझे ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि पहले मैं निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है, वह अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जानते, वो मेरे इस स्वरूप को समझ नहीं पाते। तो ये तो हुई भगवान के साकार और निराकार होने की बात, निर्गुण और सगुण होने की बात। अभी एक प्रश्न रहेगा, क्या रहेगा आप बताइए। अभी हमने चर्चा करी, बहुत चर्चा करी, बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हमने। एक चर्चा करी कि हमारा अस्तित्व क्या है, आनंदमय अभ्यास, हम शरीर नहीं आत्मा है, वो आत्मा का प्रमाण क्या है उसके बारे में चर्चा करी। हमने चर्चा करी कि हम शास्त्रों पर कैसे श्रद्धा रखें, कैसे शब्द प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण से ऊंचा है। हमने चर्चा करी कि भगवान के अस्तित्व का प्रमाण क्या है, कैसे हर सृष्टि में, हर सृष्टि के पीछे कोई सृष्टि करता होता है, हर नियम के पीछे कुछ नियंत्रक होता है, तो इस सृष्टि के पीछे भी कोई तो व्यक्ति होना चाहिए। वो भगवान को देखे कैसे, सेवा द्वारा, कारण और प्रभाव के द्वारा हम चर्चा किए। फिर चर्चा किए कि वो भगवान है कौन, षड ऐश्वर्य पूर्ण श्री कृष्ण। फिर चर्चा किए कि वो भगवान का रूप है या निराकार है। अभी एक प्रश्न रह गया, आज का अंतिम प्रश्न। जब हम दिव्यत्व के बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो एक प्रश्न रह गया दिव्यत्व के बारे में, भगवान है कि नहीं जान गए, भगवान की परिभाषा जान गए, भगवान का अस्तित्व जान गए, भगवान का रूप जान गए, एक प्रश्न रह गया। क्या सभी भगवान एक है? वो पहले आ चुके हैं इसलिए बता रहे हैं, वो पहले भी अटेंड कर चुके हैं। देवता कौन है? अरे हम तो इतने सारे देवता की पूजा करते हैं। जैसे उस दिन एक भक्त बोले, मैं नहीं मानता किसी हनुमान जी की पूजा करना, मैं नहीं मानता कि एक वानर भारत से लंका में कूद कूद भी गए। हनुमान जी, दुर्गा, शिवजी, शिवजी के कितने भक्त हैं? इतने तो भक्त, अगर किसी से एक वोटिंग किया जाए तो शिवजी जीत जाएंगे वोटिंग, क्योंकि शिवजी के भक्त ज्यादा है। और कृष्ण तो पूरी तरह से हार जाएंगे, राम के भक्त भी ज्यादा है, विष्णु के भक्त भी है, राम ज्यादा फेमस है। क्यों? मर्यादा पुरुषोत्सव, कृष्ण 16,000 पत्नियां और 16,000 गोपियां, कोई चरित्र है क्या? घर घर आकर चुरा देते, झूठ बोलने में नंबर वन, पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध झूठ के द्वारा जिताया। कृष्ण तो फेमस है ही नहीं, और हम तो शुरू से बोल रहे हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनको छोड़ दिया। हनुमान जी बेचारे कितना सेवा किए, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, लक्ष्मी जी कितनी कृपा करते हैं हमारे ऊपर, दुर्गा जी, अगर पता नहीं आप दुर्गा की कितनी, स्पेशली अगर आप बंगाल में जाएंगे या नॉर्थ में जाएंगे तो दुर्गा जी, सब लोग दुर्गा ही, सब लोग वैष्णो देवी में बैठे, जन्म हो तो वैष्णो देवी जाएंगे, शादी हो तो वैष्णो देवी जाएंगे। इन सब कुछ छोड़ के आप ऐसे जिसको कोई मर्यादा नहीं, कोई कैरेक्टर नहीं, जन्म नहीं, जन्म हुआ जेल में, जेल के बाद गए जंगल में रहने के लिए, वृंदावन में गोचर आए थे, कोई एजुकेशन नहीं हुआ, एक से एक लीला और बताए, और आप बोल रहे हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और बाकी सब भले लोगों को पीछे रख दिया, शिव जी बेचारे भूतों के बीच रह रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, वो ब्रह्मा जी बेचारे कब से तपस्या कर रहे हैं, उनका नाम छोड़ दिया आपने, और कौन रह गए? तो अभी तो हम इस जगत में जो अपने आप को भगवान बोलते हैं, जिन्होंने अपने अपने नाम का मंदिर बना दिया है, ये बाबा और वो बाबा, अरे उनको तो हम छोड़ ही दिया, अभी देवता को हैंडल कर दे, बाकी तो छोड़ ही दिए, उनके बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हैं। जो आजकल के तथा कथित भगवान बन के बैठ के टीवी पे आ गए हैं, आते हैं या कुछ सारे साल पहले आते थे, जिनकी मृत्यु हो गई और उनकी मूर्ति बना के मंदिर बना दिया, उनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, वो तो एक जुगनू के समान है, सूरज के सामने जुगनू तो फीका पड़ जाता है। अभी तो हम बात कर रहे हैं पूजनीय देवताओं के बारे में, उनका क्या? भगवान कृष्ण और अन्य देवता का छोटा 10 मिनट का लेकर आपकी बात। अगर आप किसी भी, चलो अस्पताल में आए, इस अस्पताल में, इस हॉस्पिटल को चलाने के लिए क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं, कोई बता सकता है? कार्यालय है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, सर किसी करके बताइए, आप बताइए इस हॉस्पिटल में क्या डिपार्टमेंट है? ऑपरेशन थिएटर, नेक्स्ट इंश्योरेंस क्लेम से पहले जाने आपको, और बताइए वो तो आप सब डॉक्टर बोल दीजिए, ऑर्थोपेडिक रेडियोलॉजिस्ट वगैरह वगैरह वगैरह, वो तो सब हो गया मेडिकल डिपार्टमेंट। रिसेप्शन, वेरी गुड, रिसेप्शन है, तो अगर रिसेप्शन पे एंट्री नहीं मिलेगा तो बात में कुछ मतलब ही नहीं। रिसेप्शन पे आप बोलते हैं पेपर बनाइए, पेपर नहीं बनाएंगे आप, सब स्पिरिचुअल केयर डिपार्टमेंट, आप क्या बात है, स्पिरिचुअल केयर डिपार्टमेंट जिसकी वजह से आज आना क्या आज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के भी कई बीमार होंगे ना, बताइए मैनेजमेंट, सब कुछ मैनेजमेंट ही है, मैनेजमेंट के बहुत से अकाउंट्स, और क्या आईसीयू, वो सब मेडिकल में आ गया, ऑर्थोपेडिक्स, आईसीयू, एनआईसीयू, ये उसको भी ले सकते हैं। बिलिंग डिपार्टमेंट, माता जी बोल रहे हैं बिलिंग डिपार्टमेंट,
इंक्वायरी,
ऐसे गांव से आते जिन्होंने कोई बड़ा शहर देखा ही नहीं, पूरा कंफ्यूज है, और जिसको पूछो वो इतना फ्रस्ट्रेटेड रहता है, बता बता के बोलता मुझसे मत पूछो, रिसेप्शन हो गया, अकाउंट्स हो गया, स्पिरिचुअल केयर हो गया, और बहुत सारे परचेज डिपार्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट परचेज, और क्या हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट, हॉस्पिटैलिटी वेरी गुड, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, और क्या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, बहुत जरूरी है मेंटेनेंस, सिक्योरिटी जरूरी है, पैथोलॉजी वो तो सब मेडिसिन में आ गया, ठीक है ना, कैंटीन बहुत जरूरी है, और कुछ रह गया, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस वो भी सब मेडिकल में आ गया, मार्केटिंग, अरे मार्केटिंग क्या तो बोल रहे हैं मार्केटिंग, और क्या हाउसकीपिंग बहुत जरूरी है,
मेडिकल स्टोर,
मेडिकल स्टोर, तो हर कार्यालय में अनेक विभाग होते हैं, कोई भी कंपनी में जाएंगे तो एक मेन, जैसे वो बोले मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के एक मेन आदमी होगा, जिसे बोलते हैं सीईओ, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, क्या शब्द है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और उसके अंडर सेल्स है, फाइनेंस है, मार्केटिंग, परचेज, एडमिन, आरएनडी, सिक्योरिटी, रीजनल, अनेक प्रकार के ऑफिस। अरे जब एक मामूली कार्यालय में, एक छोटी बिल्डिंग में इतने सारे ऑफिस होते हैं, अरे ये तो फिर भी हॉस्पिटल है, अब हमारे मंदिर में आइए, एक बार हम डिश बना देते हैं, एक मंदिर में इतने डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे मंदिर में कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, इतने इतने सारे डिपार्टमेंट है, हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट, डीटी डिपार्टमेंट, डीवोटी डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, दस डिपार्टमेंट बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि इतना बड़ा पद चला रहे हैं तो डिपार्टमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उधर भी हाउसकीपिंग है, उधर भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, तो सब डिपार्टमेंट, तो एक मंदिर में या एक बिल्डिंग में इतने डिपार्टमेंट है, तो एक पूरे ब्रह्मांड का जो कार्यालय है सब बराबर से चल रहा है, पृथ्वी सूर्य में नहीं गिर जानी चाहिए, कल को पता चले चंद्रमा पृथ्वी पे गिर गया, अभी ऐसा नहीं है, अरे आज इतना बारिश आया कि चंद्रमा मीरा घर में गिर गया, कभी होता है ऐसा, कभी सुना है ऐसा, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो कुछ तो अभी, क्योंकि हमको मालूम नहीं है, ऐसी अचिंत्य चीज है जो हम प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन उस कार्यालय में भी एक एक विभाग बना हुआ है और एक एक विभाग एक एक व्यक्ति को दिया गया है संभालने के लिए, यहां पे कोई विभाग देना हो तो उसको क्वालिफिकेशन योग्यता देखते हैं, उसी प्रकार से इस ब्रह्मांड के भी विभाग देखते हो तो बहुत बड़े बड़े योग्य व्यक्ति को दिया गया, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हैं, इस ब्रह्मांड के व्यवस्थापन में भी एक सीईओ है भगवान श्री कृष्ण, हम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मैं ही सबका स्रोत हूं, सब कुछ मेरी निगरानी में चलता है, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर, पूरी प्रकृति का जो खेल चल रहा है वो मेरी निगरानी में चल रहा है, बारिश आई इंद्र को एक कंपनी में वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट होता है कि नहीं होता, प्लंबिंग होता है कि नहीं होता, इंद्र जी ने वाटर सप्लाई करते हैं, सूर्य प्रकाश देते हैं, देखिए ब्रह्मा जी, ये एक मैं पुस्तक लाना चाहता था लेकिन आज नहीं मिली, ये ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं हैं, सभी पेपर पर लिखी पड़ी, ब्रह्मा जी जो इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, जैसे कि जिसने ये हॉस्पिटल बनाया है, शुरुआत किया या प्लानिंग किया, जो भी मैनेजर है इधर का, उसने सब डिपार्टमेंट्स बनाए, उसके लिए योग्यता बताई, उसके लिए इंटरव्यू लिया, आदमी को सिलेक्ट किया, ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के प्रति एक बहुत सुंदर प्रार्थनाएं बोलते हैं, जिसमें वो भगवान के रूप के बारे में, भगवान के धाम के बारे में, भगवान की लीला के बारे में और एक एक मैनेजर के बारे में चर्चा करते हैं, एक एक डिपार्टमेंटल मैनेजर के बारे में, सूर्य के बारे में बोलते हैं, बोलते हैं लोग सोचते होंगे ये सूर्य इतनी शक्ति दे रहा है, यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम, ये जो सूर्य से शक्ति आ रही है वो सूर्य भगवान की एक आंख के समान है, वो सूर्य का तेज भगवान के तेज से ही आ रहा है, सूर्य, फिर बोलते हैं अग्नि के बारे में, बोले अग्नि वायु जितने भी ये सब, अग्नि कभी यज्ञ करते हैं जब हम, तो यज्ञ अग्नि में करते हैं, स्वाहा, कितने लोगों ने यज्ञ में भाग लिया है, स्वाहा अग्नि में क्यों डाल, अग्नि जो है भगवान के, अग्नि के द्वारा हम भगवान के मुख को देते हैं, बोले जैसे अभी उदाहरण होगा, अभी एक बड़ा कंपनी का मालिक है, आप उसके लिए गिफ्ट लेके आते हैं, कुछ लेके जाते हैं या कुछ समस्या लेके जाते हैं, कुछ अकाउंट्स का प्रॉब्लम है, तब बोलते हैं ऐसा, वो बोलता है ठीक है आप अकाउंट्स के लिए बात चले जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन खुद तो सब करने नहीं बैठता, ऐसे ही उसके लिए कुछ आप खाने की पदार्थ लेके जाते हैं, तो ठीक है आप मेरे कुक को दे दीजिए, वो दे देगा, फिर सब बांट के रखा है, तो भगवान ने भी सब बांट के रखा है, अग्नि देवता भगवान के मुख के द्वारा अग्नि देव को देंगे और भगवान को अर्पण करेंगे, वर्ण देवता जल के कंट्रोलर, जल के नियंत्रण, चंद्रमा भगवान गीता में बोलते हैं गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम् ओजसा उष्णानि औषधी सर्वा, जितना भी वनस्पति है उसमें शक्ति डालता हूं मैं, भगवान बोलते हैं कैसे, सोम भूत्वा रसात्मका, चंद्रमा के रूप में, चंद्रमा के द्वारा मैं उनको शक्ति देता हूं, आप बोले कि हॉस्पिटल में किसी की हड्डी टूट गई थी, मेरी हड्डी ठीक करें, किसके द्वारा, ऑर्थोपेडिक सर्जन के द्वारा, अस्थमा हो गया था, फिजिशियन के द्वारा ठीक किया, पेट का ऑपरेशन हुआ, सर्जन के द्वारा ठीक किया। ऐसे ही सोम बुधवार सार्थमता चंद्रमा के रूप में मैंने वनस्पति में शक्ति डाली, वायु हवा लक्ष्मी देवी ठंड की देवी, कुबेर खजांची अकाउंट्स डिपार्टमेंट पे आ गए, अकाउंट्स भी संभाल रहे हैं, हर चीज संभाल रहे हैं। भगवान के पास आगे बोले कि मेरे पास बताओ छोटी छोटी समस्या लेके ये बैठे हैं, इनको संभालो या आप ही संभालो, आप ही संभालो। दुर्गा देवी फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव यस्य भुवनानि विवर्ति दुर्गा। दुर्गा के दुर्गा को बोला ये भौतिक जगत, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे कैसे दुर्गा ये भौतिक जगत को संभालती है अपने त्रिशूल से। त्रिशूल है ना उसमें तीन जो चीजें हैं वो क्या है हमने पढ़ा था पहले दिन में, आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि दैविक समस्या। दुर्गा अपने त्रिशूल से हर जीव को नियंत्रण में रखती है। कार्तिक के सेनापति हॉस्पिटल में सिक्योरिटी है कि नहीं, पूरा विश्व का सिक्योरिटी संभाल रहे सेनापति कार्तिक के। सरस्वती देवी शिक्षा, यमराज ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी स्वयं बोलते हैं अपनी प्रार्थनाओं में भास्वान यथास्व सकलेश निजेश तेज, बोले मैं तो एक छोटे जीव के समान हूं, जैसे कभी कभी कोई छोटे गहने होते हैं ना, कोई हीरा होता है वो चमकता है, अगर वो हीरे को आप अंधकार में रह दोगे चमके आगे नहीं चमके। हीरा सूर्य की रोशनी को लेके फिर उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं अरे लोग सोचते हैं मैं सृष्टि करता हूं सब कुछ मैंने बनाया। नारद मुनि ब्रह्मा जी को जाके बोलते हैं अरे आप ही सब बनाए हैं, आपसे पहले तो मुझे कुछ देख ही नहीं रहा। ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं तो सारी शक्ति आपसे ले रहा हूं और वो सब शक्ति फैला रहा हूं। गणेश जी जो आपके बहुत फेमस रहेंगे बॉम्बे सिटी में, गणपति की पूजा लोग पागलों की तरह, पहली बात तो मालूम नहीं वो गणपति पूजा ठीक से करते हैं कि नहीं, गणपति के नाम पे कितना नाच गाना होता है उसकी तो अलग ही बात, लेकिन गणपति क्या बोलते हैं। इस शास्त्र लिखा किसने, इस शास्त्र को किसने लिखा, जब व्यासदेव जी बैठ गए बोले ये सारे वेदों की रचना करते हैं मैं उच्चारण करूंगा उसको लिखेगा, आज तक शास्त्र को लिखा नहीं गया तो गणपति खुद बैठ के लिखे। अरे जो व्यक्ति खुद बैठ के लिख रहा है, कभी आप गणेश जी की आरती करेंगे तो आरती के अंत में बोलेंगे क्या बोलते हैं, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अरे वो गणेश जी जो अपने हाथों से गीता को लिखे भागवत को लिखे, अगर उन गणेश जी को प्रसन्न करना है उनको खुश करना है तो कैसे खुश करेंगे, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान का पालन करें। और वो गणेश जी वेदांत सूत्र के शुरुआत में लिखे अर्थात तो ब्रह्म जी की आशा, अभी आपको मानव शरीर मिला है उस मानव शरीर का एक भी पल व्यर्थ मत जाने दो। अगर उस गणेश जी की पूजा करनी है तो गणेश जी ये बोलते हैं उस मानव जीवन का एक भी पल व्यर्थ मत जाने, आत्मा को परमात्मा से भगवान कृष्ण से संबंध कैसे स्थापित करना है उसके बारे में जाने। तो इस प्रकार से एक सीईओ अनेक देवता पूरा स्टेडियम कर दिया, 33 करोड़ देवता को अगर स्टेडियम में बिठाने के कैसा लगेगा, सब बैठे ये बहुत डिटेल टॉपिक है हम एक दिन में चर्चा नहीं कर सकते। कल हम लोग कल 6 बजे शुरू करेंगे हम सेशन, आप 6 बजे आ पाएंगे सब लोग, अगर आपको पूरा ज्ञान जानना है तो कल 6 बजे संडे है तो उम्मीद है सब 6 बजे कितने लोग 6 बजे आ पाएंगे आप कल करेंगे, थैंक यू सो मच। लेकिन ये टॉपिक तो डिटेल में कल भी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारा एक टॉपिक पूरा बाकी है कल का, भाग्य बदलने की कला। लेकिन अंत में अंत करते करते तो इस प्रकार से अनेक देवताएं और भगवान एक है, पूरा मैनेजमेंट चला रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड को संभाल रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड की हर एक चीज को बहुत देखभाल कर रहे हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड का पर्पस क्या है? कल एक भक्त मुझसे आगे पूछे, अगर आत्मा आनंद में और व्यासार्थ है तो आत्मा को इस जगत में आना क्यों पड़ा? अगर ये जगत उखाड़ने लगे, अगर आपको मिठाई अच्छी नहीं लगती तो आप मिष्ठान भंडार में क्यों जाएंगे? अगर आपको मिर्ची अच्छी नहीं लगती तो पॉकेट में आप मिर्ची भर के नहीं रखेंगे, समझ रहे हैं? तो अगर आत्मा को आनंद चाहिए और आत्मा को दुख नहीं चाहिए तो आत्मा इस दुखालय में आई क्यों? और आई तो भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण क्यों किया? भगवान एक है, उन्होंने अनेक देवता का निर्माण करके हमें कंफ्यूज क्यों कर दिया? कंफ्यूज हो गए ना? अरे एक होते तो आसान होता। कभी कभी दूसरे धर्म के लोग बोलते हैं, दूसरे मतलब क्रिश्चियन मुस्लिम बोलते हैं, अरे आपका हिंदू धर्म कितना परेशानी है, 33 करोड़, एक होना चाहिए आसान हो जाएगा। ये भी एक प्रश्न है कि भगवान ने इतना वैरायटी बनाए क्यों? और अगर बनाया आपने को इसमें डाल दिया, हमको आनंद चाहिए लेकिन दुख भुगत रहे हैं, तो इस दुख से बाहर कैसे? अनेक प्रकार के साधु मेला जो लगा है इस जगत, पूरी मार्केट खुली पड़ी है, किसके पास जाए? कंफ्यूजन। अंत में कुछ ऐसा एक सरल मार्ग बताओ, एक ऐसी एक सरल विधि बताओ जिससे हमारा जीवन सिद्ध हो जाए, जिसका पालन हम अपने घर में रहकर कर सके, जिसका पालन हम अपने इतने बिजी स्केड्यूल में भी कर सके, अपने जीवन में ज्यादा कुछ बदलना ना पड़े और जीवन की सिद्धि प्राप्त हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। तो ये हम बहुत ही सेंस में शॉर्ट में कल डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते। तो कल 6 बजे अगर आएंगे तो ये डिस्कस करेंगे, 2-2.5 घंटा चलेगा अपना सेशन, बीच में हम 10-15 मिनट ब्रेक भी लेंगे, और अंत में आपको एक ऐसा मार्ग बनाएंगे जिससे आप जीवन की सिद्धि बहुत सरलता से प्राप्त कर सकते। और फिर हमारा प्लान है कि इस हफ्ते के बाद हर वीरवार थर्सडे को शाम को एक सेशन रहेगा, अगले 3-4 महीने के लिए, क्योंकि अगर कल आप सीख जाएंगे वो जीवन का मार्ग तो उस मार्ग पे चलना कैसे? ऐसा तो है नहीं कि चलो आज किताब दिया और भेज दिया, पूरा ट्रेनिंग होता है, फॉलोअप होता है, जैसे बोलते हैं फॉलोअप कोर्स बोलते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। डॉक्टर के पास आए, पहले दिन आए, दवाई दे दिया, बोलते हैं अभी 1 हफ्ते बाद आना फिर से। कभी कभी 1 हफ्ते का एडमिशन होता है, एडमिशन के बाद फॉलोअप होता है, तो 1 हफ्ते अगर आप एडमिट थे उसके बाद हर हफ्ते आते रहना जब तक पूर्ण रूप से ठीक ना हो जाओ। लेकिन उस फॉलोअप कोर्स का हम कुछ उसका फीस नहीं है, इसका तो फीस था, कुछ फीस नहीं है, वो आप नाम दे सकते हैं। और साथ ही साथ जिसके पास भगवत गीता नहीं है, आप में से कितने लोग हैं भगवत गीता नहीं है और सबके पास है नहीं, बहुत बढ़िया। गीता बाहर है, किसी के अपने लिए खरीदना है या किसी को देने के लिए तो वो ले लीजिए, बाहर प्रभु जी यहीं पे रहता है, गीता बाहर रहता है ना, यही व्यक्ति जो महाराज जी के पास से माधुरी बैठे। तो आपसे विनती है कल जरूर आइए, नहीं तो आपका 4 दिन का मेहनत बेकार हो जाएगा, क्योंकि इतना सब इंफॉर्मेशन ले लिया लेकिन उस इंफॉर्मेशन सब कहीं नहीं।